लोग बोलिए हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे हरे
हरे राम
हरे राम
हरे राम
हरे राम
राम
राम राम
हरे हरे
हरे हरे
सबको भजन मिल गया तीन चटाई इधर रख लो ना प्रभु जी हरी बोल
ग्रुप आ रहे हैं ना अभी तो
आ रहे ठीक है लेकिन यहाँ नंगा थोड़ी छोड़ेंगे ऊपर सुनो एक एक जो है बोलिए उधर एक पता है क्या ऊपर ऊपर मंदिर में ना सुनो मंदिर में या इधर ही जहाँ ये चल रहा है यूथ क्लास वहाँ दरिया है चार पांच दरिया है क्योंकि अभी समय है उन लोगों को ये लोग बैठ चुके हैं थोड़ा बिछा दो अगली दिन हम लोग कर लेंगे व्यवस्था फिर
जी कह रहे हैं वो दरिया मिलती नहीं है वहाँ से
नहीं एक अगर आप मांगोगे मिल जाएगी एक दो दिन देख तो लो नहीं तो फिर ले जाना
बाहर क्या है कि ज्यादा ठंडा है अपेक्षा करते यहाँ तो बैठ जाएगा आदमी आम चल फिर रहे बड़ा
आराम से हमें बता देते ना फिर आप ये बीच में बोलना चाहिए कि प्रभु जी अगली दफे चटाइयां लेंगे क्योंकि यहाँ भी ठंडाई है जब लगातार दो घंटे बैठेगा व्यक्ति ना नीचे ठंडाई है कुछ तो लो इतना सोचने की क्या जरूरत है नहीं मिलेगा तो ले जाना नहीं तो अगली दफे से दो तीन दरिया हम लोग ना सुनो हरि बोल हरे कृष्णा सुनो ऐसा होता है ना कभी कभी जब तो हल्का सा बता दिया करो ना पहले से व्यवस्था कर लेंगे हरे कृष्ण देख लो हल्का सा पूछ लो ना अगर नहीं देंगे तो ले जाना फिर ठीक है नित्यानंदो पति मोर गौरचंद्र बोले तो ऐसे ही बोल रही थी सबको आए धन्या मोर नित्यानंदो पति मोर गौरचंद्र Jugala ki so, pranam mora. बहुत सुंदर हरिबोल हरे कृष्ण, इसका भाव बहुत सुंदर है। अच्छा, आप लोगों से एक निवेदन है, एक एक चटाई सब लोग अगली दफे ले आना खरीद के, ठीक है? उसको रख लेंगे बढ़िया से। 1 2 3 4 5 6 आठ चाहिए, बड़ी वाली है जो ऐसे फोल्ड हो जाती है, बड़ी होती है ना, आठ चटाई, ठीक है? ठीक है ना? तो कौन कौन लाएंगे हाथ खड़ा कीजिए, फिर उनकी जिम्मेदारी होगी। एक दो, दो चटाई तो ये होगी, तीन चार, चार और जल्दी से कर, दो आप लाना, ठीक है? चार दो छह हो गई, कोई चिंता नहीं है, सेवा ये है सेवा, इसलिए छह चटाई और सात और आठ हो गई, ठीक है? एक ही लाना, आप एक लाना एक बोला रही, ठीक है? तो आठ हो गई टोटल, बड़ी वाली है जैसे, और अच्छी क्वालिटी की जो खूब चले, मतलब दो तीन साल उसको रख लेंगे फिर बढ़िया से ना। तो फिर ये सारी चटाइयां दे देंगे कहां पता है, बाहर दे देंगे, है नहीं? क्योंकि वो लोग भी फिर अच्छे ढंग से बैठ जाएंगे, ठीक है? सहस्त्र मित्र प्रभु हरि बोल हरे कृष्णा। अच्छा, वो अंदर फुल पैक्ड है ना, कोई बात नहीं। अभी है ना, मैंने सबसे मंगा दिया है चटाई, ये चटाइयां बाहर हो जाएंगी ऐसे करके, क्योंकि वहां भी कम पड़ जाते हैं ना, दो ही होती है बस, अगली दफे आ जाएंगी सर।
तो
नहीं, ये ला सकते हैं, कमाल है भैया, छोटी छोटी सेवा क्या है, क्यों नहीं ला सकते हैं? कोई चिंता नहीं, वो ला रहे हूँ, ठीक है ना? फिर ये वहाँ भी कम पड़ती है ना, दो चटाइयाँ काफी लोग होते हैं तो बढ़िया से बिक जाएगा, ले आएंगे ले आएंगे, हाँ हाँ कोई चिंता नहीं,
कन्फर्म कर देना दो दिन पहले,
ले आएंगे अभी अभी से बोल दिया, ये कन्फर्म है, सैटरडे को दे जाएंगे, ठीक है प्रभु जी? तो थोड़ा पहले आना है क्लास से, अगर जो उस दिन भी लाएगा, संडे को लाना है ये, संडे तक, तो संडे सवेरे तक ले आना, 7:15 तक, है ना? ताकि हम पहले से बिछा लें, ये बात है, और जो पहले देना है वो पहले दे देगा, ठीक है? अच्छा है ये सब सेवाएं, 50-100 रुपए 150 रुपए लगे, अच्छा है नहीं? ये असली सेवाएं है। और दूसरा, मैं चाहता हूँ कि ये फोटो स्टेट, जो फोटो स्टेट कॉपी मिलती है ना, इनकी भी सेवा आदमी ले धीरे धीरे। अभी तक इसको मंदिर से हम लोग खर्च कर रहे थे, इसमें भी सेवा ले लें, है ना? 50 रुपए लगते हैं ज्यादा से ज्यादा, और चिपसी टपसी वाले 50 पैसा में कर देते हैं। और ये जो आप सुन रहे हो, डायमंड हाथ में लगता है आपके, एक दिन का डायमंड खरीद सकता है कोई 50 रुपए में। और भगवत कार्यों के लिए जो धन, जो लक्ष्मी जी सेवा में लगती हैं, वही आपका बैंक बैलेंस है, बाकी पुत्र पुत्री और ये क्या बोलते हैं आपका रिश्तेदार और पत्नी बच्चे नाना लोग जिनके ऊपर आप धन खर्च कर रहे हैं, हैं प्रभु के अंश, ठीक है कि नहीं? लेकिन वो धन आपको रिटर्न नहीं आएगा, याद रखना, वो धन रिटर्न आता है, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उनके लिए क्या करते हैं, उसको खर्च करते हैं, वो वापस नहीं आता है। ये जो धर्म कार्य में आप धन को लगाते हो, यही आपका रिटर्न आता है बस। ये बैंक बैलेंस कर रहे हो आप, जैसे आप मेंबर बने तो आपने क्या बोलते हैं 21,000 रुपए बैंक बैलेंस किए भगवान को, और भगवान उसमें क्या करते हैं, भगवान इतने बेरहम नहीं है, वो रिटर्न देते हैं आपको, 10-12 किताबें देते हैं। कितने की किताब देते हैं पता है? ये जो ऋषि मुनियों ने, भगवान ने इतनी मेहनत करके शास्त्रों का ज्ञान हमको दिया, एक किताब पूछो एक किताब लिखने में कितना समय लगता है, हम उनका जिंदगी भर सेवा कर दें, हम उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं अपने ऋषि मुनियों का उनका, है कि नहीं। तो ये जो धन है, वास्तव में धन का उपयोग जो है इस सेवा में जाना चाहिए इस ढंग से। और जो आप अपने घर में राधा कृष्ण की सेवा करते हो, उनके लिए फूल लाते हो, उनके लिए भोजन इकट्ठा करते हो, वो भी बैलेंस है, वो भी बैलेंस है। तो बाकी अपने ऊपर और जो संसार के ऊपर खर्च किया जाता है वो बैलेंस नहीं है। डॉक्टरों को जो दिया जाता है वो बैलेंस नहीं है, वो गया बस। उसमें कर्म बंधन भी लग सकता है, क्योंकि आपने ठीक उपयोग किया या, लेकिन भगवान को उपयोग किया गया, कोई कर्म बंधन नहीं। भगवान कहते हैं उसका मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मेरा स्टेटस जितना ऊंचा है मैं उस हिसाब करके आपको उसको रिटर्न में देता हूं। मैं ये बातें क्यों बोला इतना कि कभी कभी धन की बात करते आदमी को यानी कि मुश्किल पड़ जाती है कि नहीं, दुख लगता है। दुख नहीं लगना चाहिए, धन जो है हम लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी उसको, है नहीं। तो इसलिए आदमी को अपने जो कमाई है उसमें से कुछ अंश निकालने का प्रयास भी करना चाहिए कि मैं इतना निकालूंगा। गृहस्थों के लिए तो 50% बता रखा है, कम से कम 100 में से आधा नहीं करें, कम से कम 10% तो कोशिश करें, ठीक है कि नहीं। एक ठाकुर जी के लिए भी मैं निकालूंगा, जो बच्चों के लिए, घर के लिए, किराए के लिए, बहुत सारी चीजें होता है, तो इतना मैं भगवान के लिए निकालूंगा या निकालूंगी। तो उससे क्या होता है, हमको देने की आदत पड़ती है, मतलब हम ले ही रहे हैं, बस जन्म जन्मांतर उसे ले ही रहे हैं, है नहीं। और भगवान का लेकर के भी उनको देने में हमको क्या होता है, मुश्किल होता है नहीं। तो यहां पर जो भजन है, धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र प्राण मोर जुगल किशोर। नित्यानंद प्रभु मेरे क्या है, धन है। अभी यहां धन की बात आई थी ना, तो हम सबके धन कौन है, नित्यानंद प्रभु। इस भजन में अर्थ नहीं है, सुनिए यहां से, केवल कान से सुनिए ये भजन, अभी इसके बाद गाएंगे। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जी का 28 तारीख को क्या आ रहा है, आविर्भाव दिवस आ रहा है, तो बहुत शुभ दिन है वो। तो मिला प्रभु जी, जी और अगली दफे के लिए हो गया, हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ये नहीं भी लाएंगे तो मैं कहीं से भी करके लाऊंगा, अगली दफे ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
हमारे 10 के आसपास ऐसे ग्रुप्स हैं
ना, जी जी
क्लासेस होती है, इकट्ठी होती है,
ठीक बात है,
4 ग्रुप्स की एक साथ इकट्ठी होती है,
बहुत अच्छा है ना, खुशी की बात है। वो ग्रुप आपके ही नहीं, हमारे भी है, ठीक है, हम सबके ग्रुप है, ये भी आपका है, ओके। ऐसे भावना रखनी है, अपना न बैठ के दूसरे पे, आप बैठिए प्रभु जी। तो धन मोरा नित्यानंद, कि नित्यानंद प्रभु मेरे क्या है, धन है, धन असली धन हमारे वही है, समझ रहे हैं, असली धन हमारे नित्यानंद प्रभु हैं। कैसे धन है, क्योंकि बिना हेनु निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाईते न है। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के आप लोगों में से एक चक्र गांव कितने लोग गए हैं, एक चक्र धाम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप लोगों से निवेदन है, अभी से, इस साल तो नहीं जा रहे, अगले साल जिनको जाना है वो बुक करा लें। हम लोग सबसे पहले जब जगन्नाथपुरी जाएंगे, जगन्नाथपुरी के बाद फिर मायापुर जाके पहले एक चक्र धाम जाएंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु एक चक्र धाम में प्रकट हुए थे, वहां जाना बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए, तो अगर कृष्ण प्रेम चाहिए तो नित्यानंद प्रभु जी के धाम जाना सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी। आपके लिए जीवन में दीक्षार्थियों का, जो दीक्षा लिए हैं, जिनको कृष्ण प्रेम चाहिए, जो इस संस्था से जुड़े हैं, उनके लिए सबसे जरूरी काम क्या है बोलो, अपने घर जाना ज्यादा जरूरी, अपने गांव न जा पाओ एक साल कोई चिंता नहीं है, बोल देना थोड़ा सा भैया कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उस साल उसी पैसे को क्या करो, बोलो प्रभु जी कितने दिन में घर जाते हो, बात है साल में ना, कितने पैसे खर्च होते हैं एक दफे में, सच बताना बिल्कुल भैया, जरा जल्दी बताओ, चालाकी मत करो, हाँ सब पता रहता है, चालाकी मत करा करो, ठीक है, अब लगाओ नहीं तो अनुमान, कम से कम 10-15 हजार रुपए खर्च होते हैं, हो जाते हैं ना 10,000 रुपए, तो यहाँ 5,000-6,000 में रिटर्न आ जाओगे, 7,000 एक दफे एक बार मिस करना है बस, और बाद में धन्यवाद दोगे जब ऊपर गोलोक में जाओगे ना कि अच्छा किया दीन नायकपुर ने, बड़ा अच्छा किया यहाँ आ गए। समझ रहे हैं? एक दफे धन मोर नित्यानंद, खाली पढ़ने से क्या होगा, एक दफे जाना है। और प्लान इस संसार में कभी नहीं बनेंगे, कभी बेटे की शादी हो जाएगी, कभी बहू की शादी आ जाए वो आ जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, कभी खुद ही बीमार पड़ जाएंगे हम लोग, नहीं बन पाएगा, फंसते जा रहे हैं यहाँ संसार में। ड्यूटी के लिए कितना टाइम है हमारे पास बताइए, फिर आजकल 12 घंटे से कम तो कराते नहीं कोई भी, आना जाना सब लगा के। और अगर दुकान हो तो कितने घंटे बैठते हैं हम लोग, 16 घंटा अपनी दुकान हो तो, समझ रहे हैं? और निकलने के लिए कितना देर आते हैं हम लोग बताइए, हफ्ते में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आते हैं, तो निकलना है ना। तो और ज्यादा ये मति हमारी होनी चाहिए कि मुझे नित्यानंद प्रभु जी के धाम जाना है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद अगर मैं सेवा में लगाऊं भगवान की फुल टाइम डिवोटी में, और अगर मैं मायापुर नहीं जा पाया तो क्या महाप्रभु की कृपा मिलेगी? प्रभुपाद बोलते हैं सारी सेवाओं का फल है मायापुर जाकर के नवदीप मंडल परिक्रमा लगा के वापस आना उसको उस वक्त, क्योंकि वो जो है एक तरफा बात करना चाह रहे थे, मैं सेवा कर रहा हूं तो मैं जहां हूं वहां ठीक हो ना, जहां हो ठीक हो, लेकिन एक दफे तो कम से कम वहां की कृपा लेके आ जाओ कि कहां कहां लीलाएं करी उन्होंने। अब तब आपके पास समय होना चाहिए, तब फिर चिड़चिड़ नहीं। मान लिया कोई बीमार पड़ जाए, हम बीमार नहीं क्या बताइए, असली बीमार है अभी हम लोग, असली बीमार, भव रोग की बीमारी लगी हुई है बार बार जन्म की, उसके लिए कोई चिंता नहीं हमको। और अभी मान लिया जैसे मेरे को पिछले 7-8 दिनों से क्या बोलते हैं 7-8 या 15 दिनों से दर्द है, मैं 4 दिन जो है आई नहीं क्योंकि सीढ़ी में चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही, दर्द हो रहा है, समझ रहे हैं? मैं जो घड़ी पर जप कर रहा था, तो जब हमको बीमारी लगती है तो हम क्या करते हैं, महीनों भर भी हमको इनकी बेड में पड़ा रहना पड़ता है, सच बात है कि नहीं बताओ, महीनों भर 2-2 महीने कभी कभी तो ऐसी बीमारी लग जाती है आदमी 5-5 साल तक बेड में पड़े रहता है, तो फिर कैसे समय निकल आता है बताओ, सारे काम कैसे बनते हैं, घर कैसे पलता है, सब पल जाते हैं, हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, बस मैं करने वाला हूं, मेरी वजह से सब चल रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़े दिन छोड़ करके भगवान के ऊपर छोड़ के जाओ, ये भक्तों का ये ट्रायल है, ठीक है कि नहीं? सही में कुछ समय के लिए छोड़ के जाना चाहिए, जरा खच पच की का पी पा सब छोड़ो, थोड़ा थोड़ा निकलो, केवल सब सुबह से शाम तक जो है बस केवल प्रभु का नाम और उनकी लीला स्थलियां, कोई याद ना आए बस। तो धन मोर नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र, बोले नित्यानंद, हाँ नित्यानंद प्रभु के बारे में तो आप 28 तारीख को सुनेंगे, उससे पहले भी मैं आपको भूमिका बना दिया, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, नित्यानंद प्रभु के बारे में चैतन्य चरितामृत आदि लीला में प्रथम जो पार्ट है पार्ट 1 में बहुत अच्छा, नित्यानंद तत्व, गौरांग तत्व, अद्वैत आचार्य जी ये पंच तत्वों के बारे में बहुत बढ़िया ढंग से विश्लेषण है। तो हमारे नित्यानंद प्रभु कौन है, जीवन धन है, जीवन धन, और पति मोर गौरचंद्र, और चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो हमारे पति हैं, वो हमारे स्वामी हैं, हमारे भर्तार हैं, कर्तार हैं, हमारे प्रियतम हैं, हमारे प्राणेश्वर हैं, सब कुछ है, ये चैतन्य महाप्रभु है हमारे, ठीक है। हमारा पति कौन है, गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ये हमारे पति हैं। और प्राण मोर जुगल किशोर, और प्राण कौन है मेरे, युगल किशोर, राधा कृष्ण मेरे प्राण हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरने गति आरो नाही मोर, राधा कृष्ण ही मेरे क्या हैं, प्राण स्वरूप हैं, जुगल दो। और अद्वैत आचार्य बल, अद्वैत आचार्य जी का अभी अभी क्या हुआ था, आविर्भाव दिवस हुआ था, तो वो हमारे बल हैं, हमारे भक्ति के बल हैं, जो भी हमको बल मिलता है। और गदाधर मोर कुल, गदाधर जी कौन है, कुल भक्तों का समाज श्रीमती राधा रानी, ठीक है, गदाधर पंडित कौन है, राधा रानी है, ये मेरे कुल है बोलते, मेरे बल, सारी परंपरा राधा रानी से निकली है, जितने भक्त हैं वही मेरा कुल है, एक कुले वो कुले दिनों तिलांजलि, सारे कुलों की मैंने तिलांजलि दे दी और राखियो चरणे मोरे पद छाया दिया, गोरांगो तुम्हें मोरे दया ना छाड़ियो। नरहरी विलास यही मोर, जो नरहरी हैं उनकी जो भक्ति है, उनकी जो सेवा का भाव है, यही मेरा विलास है बोलते हैं। विलास मतलब, विलास किसको बोलते हैं, जो ठाकुर जी की सेवा में, जब ठाकुर जी की वैभवता से आप सेवा करते हो ना, जैसे नरहरी छावर ढुलाए, नाना प्रकार से नरहरी जी सेवा करते हैं, तो वही मेरा विलास है, श्रृंगार है मेरा। बोलना चाहते हैं कुछ, बोलिए।
विलास मतलब,
हाँ तो बोलो फिर। तो वैष्णवेर पद धूलि, विलास का मतलब ही श्रृंगार, वही मेरा श्रृंगार है, वही मेरे मतलब क्या बोलते हैं मालिक हैं, जो सेवा हमको सिखाते हैं। नरहरि कौन है, नरहरि सरकार कोई साधारण थोड़ी है, भक्त परम भक्त है। तो वैष्णवेर पद धूलि ताहे मोर स्नान के लिए, बोलते हैं वैष्णवों के चरणों की जो धूलि है वो वही मेरा स्नान है बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। वैष्णवों की चरणों की धूलि, तो लेकिन हम लोग वैष्णव में गलतियां निकालते हैं ढोट ढोट करके, कहीं से निकल जाए बस, और फिर उसको चिगम की तरह खींचेंगे, उसको खींचते हैं हम लोग ऐसे करके चिगम, तिल को ताड़ बनाएंगे, चुटकी को बोलेंगे ताली बजी थी, क्योंकि हमारी आदत है निंदा करने की, सुनने की, बोलने की, क्योंकि इसमें हम मास्टर हैं सब, है नहीं, भक्ति में मास्टर कम है। तो ये जन्म जन्मांतरों का स्वभाव बना हुआ है तिल का ताड़ बनाने की। तो वैष्णवों का जो पद धूलि है, वैष्णवों के चरणों का जो धूलि है, यानी कि वैष्णव की आज्ञा रह, आज्ञा में रहकर उनके उनका भगवान का भजन करना है, वैष्णवों का आश्रय लेना है, ठीक है कि नहीं। और आश्रय में आपको कहना मानना होता है, अपने मन की मनमानियां छोड़नी पड़ती हैं, वैष्णव आपको डुबाएगा नहीं, सबसे पहले विश्वास होना चाहिए, वैष्णव आपको क्या करेगा, डुबाएगा नहीं, पानी में डुबा के मारेगा नहीं, बल्कि निकाल देगा आपको भवसागर से, ये विश्वास होना चाहिए आपको सबसे पहले, कि जो वास्तव में वैष्णव है ना, सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते हैं, अपना बुरा हो जाए चलने देंगे, लेकिन दूसरे का बुरा नहीं करेंगे, ये है वैष्णव। तो इसलिए भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए दृढ़ भाव से। तो तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, बोलते हैं तर्पण जो करते हैं ना हम लोग, तर्पण जैसे हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तर्पण का मतलब क्या है, ऐसे हो जब तर्पण देते हैं अपने पितरों को ये सब, ठीक है कि नहीं। तो वो जो है क्या है, वैष्णव का नाम, हमारे मुख में वैष्णव का नाम रहता है, और वैष्णव को कैसे बोलना चाहिए प्रभु जी बताइए, वैष्णव का किस हिसाब से बोलना चाहिए बताओ, कैसे बोलना चाहिए वैष्णव के बारे में, जैसे कि पीछे से, जैसे पीछे किसी के बारे में बोलना है तो क्या बोलोगे, बियंदास, हिज ग्रेस ब्रजेंद्र नंदन प्रभु, अभी दास बोल दिया फिर गलती हो गई, आप उनको दास बोलोगे, हिज ग्रेस बोलना है, हिज ग्रेस, हम वैष्णव की सभ्यता में भी है, और नहीं तो श्रीमान ब्रजेंद्र नंदन प्रभु, श्रीमान, ये भाषा है, ये शिष्टाचार सीखना चाहिए हमें, ठीक है कि नहीं। और ये शिष्टाचार है, सबसे पहला शिष्टाचार क्या है, जैसे मैंने किसी को बोल दिया है मैं 10 बजे आ रहा हूं, प्राण जाए पर वचन ना, 10 बजे आ रहा हूं का मतलब क्या है, आप 10 बजे नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपको फोन करना चाहिए, और आप ये बहाना नहीं मारिए कि फोन नहीं मेरे पास, फोन लो, आप इतने गैर जिम्मेदार कब से हो सकते हो, आपको फोन लेना चाहिए, नहीं तो किसी पड़ोसी को अड़ोसी को बोल करके उनको बुलवाओ कि मैं 10 बजे नहीं आ पा रहा हूं, मैं 1 बजे आ पा रहा हूं, मैं किसी को लटका करके सेवा कर रहे हो कि दुखी कर रहे हो उसको बताओ, बोलिए प्रभु जी, ये दुखी करना हुआ। इसी प्रकार जब हमने देखा भगवत गीता हम लोग बांटते हैं, लेकिन भगवत गीता का पैसा लेने में नानी मर जाती है, पैसा सही में, जैसे प्रभु जी को प्रभु जी का कितना उनका पूरा महीना बीत गया बोल बोल के कि भगवत गीता निकालो, और कोई निकाल नहीं रहा है। उनको भी पैसा देने में प्रॉब्लम होती है। अरे जब लेके गए हो चीज तो आपको होश रहना चाहिए कि मंदिर में मंदिर वालों ने छपाई है चीज, छपने गई है, उनको लक्ष्मी देना पड़ेगा कि नहीं प्रिंटर्स को, नहीं तो अगली खेप देगा ही नहीं। वो नहीं देते हैं क्योंकि उनका उनका कागज कितना लगा हुआ है सब। तो हम जो भी गीता लेके गए हैं, हमें टारगेट दिया 20 दिन, बताओ 20 दिन आप 20 दिन लेके घूम रहे हैं, आपका नहीं निकला तो 18वें दिन में बोलो, 15वें दिन में बोलो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, सोच के ले जाऊंगा कितना मैं निकाल पाऊंगा कितना नहीं, पहले से बोल देना कि मैं प्रभु जी, ठीक है कि नहीं। सोचना चाहिए इंसान को, क्योंकि हम सोचते ही नहीं है, हमें ये चिंता ही नहीं कि निकले ना निकले, बस थोप दिया हमारे ऊपर जी चलो जी करो। शुरू में ही बोल दो प्रभु जी मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, 10 कर पाऊंगा 10 ही करो बस। लेकिन 10 क्या करना है, जो फर्स्ट क्लास पर्सन होता है वो अपने पल्ले से पैसा लेकर के दे देता है। इतना पैसा कोई इतना भिखारी थोड़ी है, अपने पल्ले से दे दो, निकालते रहो, जल्दी निकालोगे बल्कि मेरा लगा है करके। ये भावना लोगों में रहती है पैसों की टेंडेंसी, और उसी दिन 10 का पैसा दे देंगे। जीता मित्र कोई सबसे पहले पैसा लेते हैं, क्योंकि भूख तो भूखी है ना, पता है कितने लटक रहे हैं पैसे अभी तक, जो पहले कृपा कर दिए थे। तो क्लासे में बड़ी अच्छी सुन लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हमारा व्यवहार जो है नील होता है, नील है कि नहीं। तो हमें जीवन में सीखना है कि हम कुछ लिए हैं लाए हैं, किसी को फोन करना है नहीं करना, उसको एड्रेस देना है अपने आप बोले, ये नहीं कि वो पीछे लगे रहे भाई अब दो। बड़ा दुख लगता है ना, फिर दुख लगता है, लगता बताइए। तो ये सीखने की चीजें हैं, मतलब इससे हम वैष्णव बनते हैं। अगर हमें कोई चीज नहीं हो पा रही, नहीं कर पाते हैं, तो बोल दिए प्रभु जी मैं नहीं कर पाऊंगा, और थोड़ी पीछे कोई सर पे हो इनकी बजमान, कोई बात नहीं ना प्रभु, दुखी मत हो, नहीं कर पाओगे ना, इतना अपने आप को फ्रस्ट्रेशन हीन मत समझो, नहीं हो पा रहा है, हो गया आप। लेकिन कितने, ये कितनी बड़ी बात है कि आप ये कह रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, हो गया, जबरदस्ती का सौदा थोड़ी है ये, तो भैया सेवा करोगे तो आप ही को फल मिलेगा, है नहीं, दो चार घरों का उद्धार होगा और वो फल भी आपको मिलेगा भाई, चार लोग भक्त बनेंगे तो आप गीता पहुंचाए थे वहां, भगवान थोड़ी भूल जाएंगे इसने इतनी मेहनत की थी। तो हम मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है सही में, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम द्वार द्वार हम पहले ही बोल देते हैं कि नहीं लेगा वो, कमाल है, आप सेवा में तो जाओ नहीं लेगा बात का बात है। जैसे प्रभु जी को मैंने भेजा एक दफ्तर, वो इनकी 10 गीता निकाल के लाए, वो रेड लाइट में परसों भेजा, मैंने कहा भैया निकालो उसको, तो 3 गीता निकाल के लाए। वो पहले बोले थे कौन लेता है पूरी बड़ी मुश्किल, मैंने कहा बड़ी मुश्किल से ले तभी तो आपको पता चलेगा, उसी में तो अनुभव होंगे, जब अनुभव होंगे आपको कि दुनिया कितना माया में गिरी हुई है, और भक्तों को दया दिखा करके अपना अपना परिश्रम करके उनके पास जाके वो एक बहुत बड़ी चीज देके आते हैं, समझ रहे हैं। तो हमें ये भाव ऊंचा रखना है, ऊंचा स्टैंडर्ड। तो तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, हमारे मुख में वैष्णव का नाम होना चाहिए, लेकिन पीछे भी हम लोग पीछे सामने ही नहीं बोलते हैं, ठीक है, नहीं किसी के भी, किसी के लिए भी बोले तो उनको प्रभु जी बोले हम, हमें शर्म चिंता नहीं आनी चाहिए, दास जी ऐसा बोलने की जरूरत भी नहीं है। प्रभु का मतलब है अभी हमारे लिए वही मालिक है, हम पहले वैष्णवों को अपना मालिक बना लें, अपना क्या बना लें, प्रभु, प्रभु मतलब मालिक, कि आप मुझे अब अपनी सेवा में लगाइए, ये वो प्रभु का मतलब, महाप्रभु तो एक ही है सबके महाप्रभु। तो ये स्टैंडर्ड है हमारे, यानी कि गौड़ीय वैष्णवों का प्रभु बोलते हैं, प्रभु जी एक दूसरे को सम्मान से, दास जी बोलने की जरूरत नहीं है, है कि नहीं, ये बात है। वैसे हिज ग्रेस बोले, हिज ग्रेस क्या बोलते हैं, ये प्रभु जी, ये प्रभु जी, हिज ग्रेस ये प्रभु जी, नहीं तो श्रीमान ये प्रभु जी। हम अपने मुख से दास जी बोलने की, हम वो दास हैं, उनको पता है मैं दास हूं, लेकिन हम उनको दास जी के बोलने की क्या जरूरत है, जी तो छोड़ो, खैर लोग जी भी नहीं लगाते हैं, तो मैं बोल रहा हूं तो दास सीधा बीएन दास कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, भाषा में भी देखिए उन्होंने इतना भी नहीं कि चलो इतना भी बोल रहे तो कहां जा रहे हैं, ये भी नहीं भाई तुमसे छोटे हो गए क्या हो। कोई भक्त ना हो, चलो संसारिक व्यक्ति आए, भक्त नहीं है वो, सारे नियम तोड़ रहा है, आपसे उम्र में बड़ा है, आप उनको क्या करोगे, इज्जत दोगे जी, उनको जी बोल करके, उनको ये करके, ठीक है नहीं, तब कहा जाएगा आपकी भक्ति सर्वोपरि है। चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी नंबर 1 और उसके आगे कहां बैठ रहे हैं, जूतों के पास बैठ रहे हैं। देखिए क्या चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड घट गया क्या, बढ़ गया, हम दीनहीन दीनहीन बनने से हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है। लेकिन संसार में लोग बोलते हैं दीनहीन नहीं बनना है, क्या होना है, तन के रहना है एकदम बिल्कुल। कोई एक कहता है तो चार बोलो उसको। ये संसारिक लोगों की, माता पिता भी कभी कभी ऐसा ही सिखाते, बेटा जमाना ऐसा नहीं रहा। दो चार धर के गाना सुनेगा। तो ये अच्छी शिक्षा नहीं है, ये हमारा भक्ति का जीवन नहीं है। तो बोलते हैं विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने, विचार करें मन में ये सब चीजों को और भक्ति के रस का आस्वादन करें। जब हम वैष्णव के नाम, वैष्णव मेरे नाम है उल्लास, जब हम वैष्णव का नाम लेने में हमें खुशी होती है, उनके बारे में बोलने में खुशी होती है, ठीक है कि नहीं, तो समझना चाहिए क्या हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। मध्यस्थ श्रीमद् भागवत पुराण, और अपने सेंटर में, अपने बीच में क्या रखना चाहिए हमको, केंद्र बिंदु में भागवत महापुराण। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलो श्री मध्वाचार्य त्रिभाव दिवस महोत्सव की। तो वैष्णव उच्छिष्ट ताहे मोर मन निष्ठा, ताहे मोर मन निष्ठा। वैष्णव जी का, वैष्णव का जो झूठन है, झूठन उसको भगवान जो प्रसाद भोजन लेते हैं उसको प्रसाद कहा जाता है, महाप्रसाद। और जब उसको वैष्णव गण ले लेते हैं, भक्त लोग ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, वो महामहा प्रसाद हो जाता है। क्या ये भावना है? हम लोग तो प्रसाद को ही सबसे पहले क्या बोलते हैं, उसमें राजमा बुद्धि हमारी जाती है, चावल बुद्धि जाती है, चपाती बुद्धि जाती है, पनीर बुद्धि जाती है हमारी सबसे पहले। हम ये सोचते हैं इसको भगवान ने पाया है, अब ये पनीर प्रसादम है, अब ये राजमा प्रसादम है, चावल प्रसाद। हमें ये अपने मुख में स्टैंडर्ड बांध लेना चाहिए, कभी कभी निकल जाए अलग बात है, लेकिन आदत डालनी चाहिए हमको ये कि हम चावल प्रसाद बोलें, ये बोलें खाने। लेकिन हाय रे इतनी, मतलब आपका आदमी देख लेता है तो वो सब भूल जाता है। हरि बोल, हरि बोल, बोले राजमा का तो हरि मिला नहीं बिल्कुल, हरि बोल, आफत निकल गई। कभी भोजन खाया ही नहीं, बचपन से अभी तक खा ही रहे दिन रात, शांति में आएगा जरूर, ठीक है कि नहीं। प्रसाद बुद्धि पे महाप्रसाद बुद्धि, और महाप्रसाद में भी अगर वैष्णव लोग ले लें और उनका छोड़ा हुआ वो हमारे पास है दम खाने के लिए, उसको पाने के लिए दम है हमारे पास नहीं, हम तो बोलेंगे बाप रे बाप, पाने से पहले ही बोलेंगे प्रभु जी प्रसाद अभी नहीं हुआ, जब पा लूंगा जो चूस चास करके जो नीचे डाल दूंगा ना वो महाप्रसाद है, महा महाप्रसाद पाओगे, पाओगे है, भक्ति इतनी है। नारद मुनि ने वही पाया था, और नारद मुनि बोलते हैं उसको पाने से ही मैं इतना बड़ा भक्त बना, और वो पाने के लिए भी मैंने आज्ञा ली पहले, ऐसे नहीं बोलते पहले आज्ञा ली मैंने, समझे कितना बड़ा, कितना ऊंचा कोटि का भक्ति का भाव है। इसीलिए वृंदावन दास एक हैं प्रबोधानंद सरस्वती, जिन्होंने वृंदावन महिमामृत किताब लिखी है, वृंदावन महिमामृत, वो लिखते हैं जब वृंदावन में वो व्यक्ति रह सकता है जो वृंदावन के मड को, कीचड़ को, कीचड़ बताइए, जो महाप्रसाद समझ के खा सकता है दम, मतलब कितना स्टैंडर्ड ऊंचा, मतलब उस वो मूल है उनका, वहां के कीचड़ भी जो है क्या है, चिंतामणि भूमि है। सोचिए उनका मतलब स्टैंडर्ड कितनी भक्ति है उनके भीतर में, लबालब लबालब भरी हुई भक्ति से ओतप्रोत है, छलक रही है उनकी भक्ति, इतने विनम्र। उत्तम हैया अपना के अधम माने, है उत्तम लेकिन अपने आप को दीनहीन बोल रहे हैं, बिल्कुल दीनहीन, बिल्कुल अधम। मालाबाद मुकरना माता जी, ठीक है मालाबाद मुकरना, कथा के समय माला नहीं करनी चाहिए कोई भी हो, क्योंकि एक समय में एक काम, क्योंकि वो माला माला नहीं है ना, फिर हम दो काम करने जाने की पूरा हो जाए, दिन भर क्या करोगे फिर बाद में, समय निकालिए भगवान के लिए स्पेशली, ठीक है, माया के लिए नहीं, तो माया अपने लिए समय निकालेगी फिर। सच में जब हम भगवान के लिए समय नहीं निकालते माला करने के लिए, तो माया बोलती थोड़ा देर क्रिकेट देख लो, है ना, अच्छा स्कोर चल रहा है। और फिर बोलते थोड़ा टीम में डांस वांस देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे सब ऐसे ही है। और क्या, फिर टीवी खुल जाएगा, ठीक है कि नहीं? ऐसे ना ना पता कि माया की तो इतनी चालें हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। और सच बताए तो अभी हम लोग 99% माया में ही है, अभी हम निकले कहाँ है, अभी तो माया का रस का आनंद ले रहे हैं। आनंद ले रहे हैं, रस भी नहीं बोलेंगे उसको, माया के विष का पान कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं 24 घंटे में। तो वैष्णव उच्छिष्ट ताहि मोर मन निष्ठा, ये मेरे मन में निष्ठा होनी चाहिए कि वैष्णव का उच्छिष्ट ही, और वैष्णव थे नामे थे उल्लास, वैष्णवों का नाम में उल्लास, उनका नाम लेते ही उनको उनके बारे में बोलते ही, क्योंकि भगवान के धाम में वैष्णव ही मिलेंगे आपको, समझ रहे हैं? और भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उनसे नफरत करोगे तो भगवान आपको दिखने वाले भी नहीं है। आप बोलते हो मैंने भागवत 3000 दफे पढ़ा है, बोले अपने जेब में रखो भागवत को, भी बोलेंगे 3000 दफे पढ़ा है, बोले प्रैक्टिकल, वेर इज प्रैक्टिकल लाइफ? वो पढ़ने से फल क्या मिला, फिर रिजल्ट क्या हुआ तुम्हारा? तो ज्ञान अपने पास रखो बोलेंगे, यहां सेवा चलती है भैया, ज्ञान अपनी जेब में रखो। तो वृंदावन ये चबूतरा ताहे मोरा मन घेरा, वृंदावन का तो चबूतरा है, ठीक है कि नहीं? वृंदावन का जैसे रास स्थली है, वृंदावन का क्या बोलते हैं, वृंदावन के वन हैं, यमुना तीर और वनचारी, ये सारी चीजें। वृंदावन चबूतरा, वृंदावन का चबूतरा का मतलब क्या बोलते हैं बंगाली में चबूतरा किसको बोलते हैं? वैसे चबूतरा का मतलब होता है जो घर के आगे होता है, ठीक है कि नहीं? तो वृंदावन में जब हम वृंदावन के दृश्यों को देखते हैं, जितने भी हैं वहां पर, वही मेरे मन का घेरा है, मेरा मन मतलब उसी में घिरते रहता है, बस वही रहता है और कहीं इधर उधर नहीं जाता है। तो कहे दीन नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, मैं बहुत दीन होकर के, मैं भक्ति में बड़ा गरीब हूं। दीन नाम उसी का होता है, दीन का मतलब जो भक्ति में गरीब है, ठीक है ना? ये है भजन को गाएं उसको पक्का। नित्यानंद प्रभु की कृपा ली, अब चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन कौन सी तारीख को है चैतन्य महाप्रभु का? वो भी 28 को ही है, ठीक है, 1 महीने बाद। तो गोरंगो तुमी मोरे दया न छाड़ी हो, दया न छाड़ी हो, I'm
Thank you.
हे गौरांग महाप्रभु, आप मेरे प्रति अपनी दया नहीं छोड़ना, मुझे अपना बनाकर अपने लाल रंग के कोमल कोमल श्री चरणों में रखना। आपके श्री चरणों की प्राप्ति हेतु मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है। शीतल चरणों में अब मैंने शरण ली है। मैंने इस कुल और उस कुल को त्याग कर दिया है। आप कृपा करके मुझे अपना कहकर अपने चरणों में रखना। वासुदेव घोष आपके चरणों को धारण करके आपसे प्रार्थना करता है कि कृपा करके मुझे अपने चरणों की छाया में ही रखिएगा। यह है प्रे। ऐसी प्रार्थना जब हमारी हो जाती है तो भगवान को समझ में आ जाता है कि ये इसकी असली में मनोभाव क्या है। अगर कोई व्यक्ति एक चीज को एक ही दफे मांग रहा है, इसका मतलब उसकी ज्यादा क्या है, रुचि नहीं है। ठीक है, एक दिन मांग लिया, उसके बाद बात ही नहीं करी 6 महीने तक, इसका मतलब वो ज्यादा गंभीर नहीं है। और जो व्यक्ति वास्तव में, जैसे बोलते हैं ना, पीछे ही, जैसे हम संसार पीछे पड़ जाते हैं, बोले भैया भक्ति में तो पीछे पड़ना पड़ेगा, अभी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, जब तक हम पीछे नहीं पड़ेंगे बार बार अगेन अगेन, ठीक है कि नहीं, तब तक जो है वो क्या होगा, बोलिए भगवान को आपकी नियत का पता नहीं चलेगा, सिरत का पता नहीं चलेगा कि आप चाहते क्या हो, क्या आप वास्तव में हमको पाना चाहते हो। पता चला 10 दिन में कुछ और चीज मिल गया तो बदल गया इरादा। बार बार पूरे जीवन भर पीछे पड़ जाओ, हे प्रभु मुझे दे ही दीजिए, सच में भगवान दे देंगे फिर। ठीक है, समझ रहे ना। तो बार बार जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि ये हरि नाम को अगर हमें भीख मांग करके भी मांग लेना पड़े तो उसको क्या करें, हम मांग लें भीख मांग करके। तो ये भीख तो छोड़ यहां तो माला दे रहे हैं फिर भी नहीं होती लोगों से, है कि नहीं। किसी को थोड़ा सा कह दो ठीक से जप करो करके, अगर बोल दिया तो उसी में आदमी बोलेगा ऐसा कैसे कह दिया, मैं ठीक तो कर रहा था। मैं कोई सुनना नहीं चाहता है ना, जैसे तो अगर कोई वैष्णव आपको सुना रहे हैं तो समझना चाहिए कृष्ण की तरफ से ये इंडिकेशन है और हमारे ऊपर बड़ी महती कृपा हुई है। लेकिन संसारिक जीव चाहता है मेरे को कोई छेड़े नहीं, बस मैं जैसा कर रहा हूं जैसा सोच रहा हूं वो सब ठीक है, गलत बात है। हमें वैष्णव लोग बोले यही तो हमारा भाग है, कोई हमको बोले, क्योंकि हमारी हम सोचते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति सोचता है मैं बहुत समझदार हूं, लेकिन जो अपने आप को ये समझता है मैं समझदार हूं, वैष्णव लोग क्या समझते हैं अपने आप को, अव्वल दर्जे का मूर्ख। लेकिन हम क्या सोच रहे, नहीं नहीं मुझे सब पता है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं गुरु ने मेरे को मूर्ख जानकर कहा कि केवल महामंत्र जपो बस, इसी में अधिकार है तुम्हारा। और हमारी इस स्थिति क्या है, हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं और यही समझदारी हमको क्या होता है पता है, ले डूबती। हम संसार के समझदार हो सकते हैं लेकिन ये यहां के समझदार नहीं। हर स्थिति में 50 साल भी हो जाए भजन करते करते समझदार मत समझना, और सीखने की जरूरत है। और गोपियों की तरह आपके सैकड़ों जन्म हो चुके हों, गोपियों की तरह सैकड़ों जन्म हो चुके हों, फिर भी क्या बोलना, अभी तो शुरुआत हो रही है, सच में शुरुआत हो रही है। तो 10 प्रकार के नाम अपराध हम लोगों ने बोल दिए हैं, ठीक है। तो आज जो है अध्याय 14 है हरिनाम चिंतामणि में से, और यह है सेवा अपराध। आज क्या लेंगे, सेवा अपराध। गदाधर पंडित गौरांग महाप्रभु जी और जाह्नवी के प्राण स्वरूप श्री नित्यानंद, श्री सीतापति, अद्वैत आचार्य श्रीवास आदि गौर भक्त समूह की जय हो, जय हो। हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, श्रीमन महाप्रभु ने कहा मेरे प्रिय भक्त हरिदास, आपने जिस प्रकार के सभी नाम अपराधों के तत्व को प्रकाश किया है, उससे कलयुग के सभी जीवों को मंगल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम नाम तत्व के आचार्य हो। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं, अरे बोल सोएगा नहीं, इनको नींद आ रही, खड़े हो जाएगा। तो बोलते हैं कि तुम ही वास्तव में आचार्य हो, नाम के आचार्य, क्योंकि तुम आचरण करके सिखाते हो। कुछ भक्त होते हैं जो बोलते बहुत अच्छा है, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से बोलते हैं, लेकिन आचरण अच्छा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग आचरण अच्छा करते हैं, बोल नहीं पाते हैं उतना अच्छा, लेकिन तुम तो बोलते भी अच्छा हो और आचरण भी अच्छा करते, इसलिए तुम आचार्य हो। वही आचार्य हो सकता है जो अपने आचरण से सिखाता है, जो आचरण भी अच्छा करता है और बोलता भी है। तो ये यहां पर भाव है कि आपने जिस प्रकार सभी नाम अपराधों के तत्व को प्रकाश किया, आप ही वास्तव में नाम के आचार्य हो। हे महापुरुष, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, देखिए अपने भक्त को, इसको कहते हैं बड़ा व्यक्ति, जिसकी सोच, जिसकी बोली, जिसके बड़ा कौन है, देखिए बड़े विचारों से होता है, लंबाई चौड़ाई से बड़ा नहीं होता है। उनको, अपने भक्त को महापुरुष कहने में शर्म नहीं आ रही, और हम लोग को प्रभु जी कहने में उनको बड़ा, हम जब कभी इंट्रोडक्शन देते हैं, ये दास जी, ये सीधा, हम लोग को, हम सोचते हैं घट जाएंगे, दो इंच नीचे गुब जाएंगे, नीचे हो जाएंगे किसी को सम्मान देने में, और तृणादपि सुनिचे ने तो रटा हुआ है एकदम मुंह में, वो भाव उसका खत्म कर दिया। तो किसी को सम्मान देने में हम क्या नीचे हो जाएंगे, आप बड़े हो जाओगे, आप उल्टा, ये वैष्णों की दुनिया उल्टी है, यहां उल्टा होता है। भगवान अर्जुन के ड्राइवर बने, दूत बने, तो क्या उनकी भगवत्ता में कमी आई, भजन बन गया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई भजन बना दिए लोग, उसको भजन गादा के करोड़पति बन गए भाई। फिर यह है भगवान की भगवत्ता का, उनके कार्यकलापों का। तो हे महापुरुष, तुम्हारे मुख से नाम तत्व का श्रवण करके मैं अति ही उल्लसित हो गया हूं। क्या हो गया हूं? उल्लास से भर गया हूं, मतलब हर्ष से, मुझे आनंद आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु बोले, मुझे आनंद आ रहा है। नयनम गलद अश्रुधारया, बदनम गदगद रुद्रया गिरा, पुलकेन निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये 8 श्लोक किनको याद है, हाथ खड़ा करें। कृपा करके आप लोगों से निवेदन है, इनको भी याद कर लें। अगर आप गौरांग महाप्रभु के बनना चाहते हो, तो उनकी निज चीजों को, पूरे जीवन भर में गौरांग महाप्रभु ने ये 8 शिक्षाएं दी है बस, और सारे शास्त्र जितने हैं ना, उनका ये क्या है, जीष्ट, निचोड़ बस। इसके प्रतिदिन इसका उच्चारण, प्रभुपाद जी ने जो हमको पैकेज दिया है ना, न भूतो न भविष्यति, सच में आप सीधा गोलोक जाओगे बस, सीधा। और नहीं भी जाओगे तो यही गोलोक है, यही गोलोक है भक्तों के लिए। हमको शरण मिल गई, इससे बड़ी कोई चीज है? हम लोग सब शरण ढूंढ रहे थे, कहां जाएं। अच्छा ये बताओ, जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, तो भैया फुल टाइम बन जाओ ना, आ जाओ, नौकरी लगाते हैं आपकी हम, काहे को संसार के धक्के खाने को तैयार हो तुम। बोलेगा मेरे माता पिता को कौन पालेगा तू, मैंने कहा बड़ा पालने वाला आया तू, तो फुल टाइम तो बन, इतना बढ़िया पालेंगे, बल्कि वो भी गढ़ी में आ जाएंगे बेजबाज करके, समझ रहे हो? और गढ़ी में आए तो जीवन धन्य हो गया, क्यों प्रभु जी? भगवान का प्रसाद मिलेगा बढ़िया से, फ्री ऑफ कॉस्ट भी, और माला बनाओ, कथा सुनो। तो ये केवल भ्रम है हमारा, भ्रम कि कौन पालेगा, मैं फुल टाइम बन जाऊंगा तो कौन पालेगा हम। दरअसल हम भगवान की शरण में जाना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए बहानेबाजी करते हैं नाना प्रकार की। ये मन जो है ना, दुष्ट मन जो है, बहाने मारता है, ऐसा होगा तो ऐसा क्यों हो जाएगा, वैसा होगा तो ऐसा क्यों हो जाएगा। नो नो नो, जिसका कहीं नौकरी नहीं लग रही, सही में आ जाओ प्रभु, आज से फुल टाइम ट्रेनिंग शुरू, परम आनंद, सुबह शाम कब प्रसाद बना पता ही नहीं चलेगा, और डेली फीस्ट, कौन खाए, समझ रहे हैं? और इतना बड़ा घर के मालिक बन जाओगे, पूरे विश्व में 550 घर है, कोई हमसे सेठ ज्यादा? बोलो जी, क्यों माता रानी? गृहस्थ मतलब भेद चलते रहता है, मैं जैसे किसी को प्रोग्राम में बुलाता हूँ ना, आज इस साइड प्रोग्राम है मायापुरी में, तो आप लोग आ जाना। बोले प्रभु जी वो क्या सोचेंगे। मैंने कहा तुम्हें सोचने में ही रह जाओ मेरी जिंदगी भर, वो क्या सोचेगा। मैंने कहा हम कह रहे ना आपको, उन्होंने कह रखा है। बल्कि तब मैं उनको उत्तर देता हूँ, आप लोग आओगे तो वो नए भक्त लोग हैं, उनको अच्छा लगेगा, बल्कि आपको देख करके उनका भी मन करेगा चलो मैं ओ अच्छा ऐसी बात। उनका हाँ ऐसी बात है, क्योंकि गृहस्थों की बुद्धि बड़ी लिमिटेड रहती है, यहाँ से वहां नहीं जाएंगे, वहां से वहां नहीं जाएंगे, उससे बात नहीं करता हूँ, उससे ये हो रहा है, उससे वो हो रहा है। इसी में रचे बचे हुए हम लोग, ऊपर उठिए। तो आप आचार में आचार्य एवं प्रचार में पंडित हो। पंडित उसको कहते हैं जिसको हर विषय का ज्ञान होता है, और वो भी कैसा ज्ञान, शास्त्र के हिसाब से। फिर माता जी आप माला कर रही हैं, नहीं कर रहे ना, ठीक है। तो मोह से भी अभी सुनिए ध्यान से, ठीक है, सुनिए ध्यान से। अभी मोह से इतना ये भी, इसको भी बोलते हैं मायावाद। जब कथा सुन रहे हैं तो उस वक्त कभी कभी बोलते हैं, लोग बोलते ना मैं हरे कृष्ण बोलते रहूंगा बीच में, उस वक्त नहीं, वो जरूरत नहीं है, वो हरे कृष्ण महामंत्र ही सुन रहे वहां, क्योंकि मनमानी भक्ति नहीं करनी है, समझ रहे हैं। अभ्यास डालो तब अभ्यास कहे जाएगा, यहां से जब बाहर जाओ तब हरे कृष्ण बोलते रहो, वो है अभ्यास। आप हरिनाम रूपी धन से धनी हो। रामानंद राय ने मुझे रस तत्व की शिक्षा दी, और अब आपने मुझे नाम की महिमा की शिक्षा दी। अब क्या सीखने को मिल रहा है बताइए प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं रामानंद राय ने मुझे रस तत्व की शिक्षा दी। बताओ, कृष्ण होकर के सुनना पसंद कर रहे हैं, देखिए अपने भक्तों से सुन रहे हैं। इससे डायरेक्ट पता चल गया कि बिना भक्तों के संग की भक्ति हो ही नहीं सकती है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं, आप वैष्णव के पिछले जीवन के बारे में मत देखो, काला गोरा मत देखो, ऊंचा नीचा मत देखो, किस घर से आया, आप ये देखो वो कितना शरणागत है, कैसे हो। एक भी व्यक्ति नया भक्त जिस कोण में आ गया वो बाहर के सन्यासी से अच्छा है, बाहर की याद रखना वो सन्यासी है। ये लाल ड्रेस पहनना डंडा पकड़ना बात का काम है, मन से सन्यास है, समझ रहे हैं। क्योंकि बाहर के सन्यासी क्या करे, हरिनाम नहीं जप रहे हैं, गीता भागवत से नहीं बोल रहे हैं हम लोग, तो ये सन्यासी है ये, क्योंकि सारे जन्मों के अनेक जन्मों में भटक करके अब ये आया शरण में। बस ये सन्यास का मतलब क्या है बोलो, सारी मन के धर्म को छोड़ करके नहीं शरण आओ, ये तो कर दिया उसने, यही तो टेक सन्यास, यही तो सन्यास है। सन्यास का मतलब क्या है, उसने सारे पंथ एक कुल उस कुल इस कुल सब कुल को छोड़ दिया, उसने लात मार दी, क्या किया, कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान, ही सन्यासी, ही इज नॉट नियोफाइट डिवोटी। भाव समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझे भाव। एक जन्म की भक्ति से यहां नहीं आ सकते हो आप, ही इज नॉट पीला वस्त्रधारी। अनेक जन्मों के बाद यहां पर आप आते हो, अनेक जन्मों के बाद, ये इतना आसान नहीं है। आप सभी फॉर्चुनेट सोल हो, तो इस भाग्य को हम और बढ़ाएं आगे, और बढ़ाएं, ठीक है। और बढ़ेगा कैसे बोले, क्लास में बैठ जाएं, इससे बढ़ जाएगा उस, क्योंकि इससे 7 दिन मति जो है पैकेज में रहेगी पूरा, बढ़िया मति हमारी बिगड़ नहीं हो सकती है भाई, इधर उधर विचलित नहीं हो सकती है। तो अब आपने मुझे नाम की महिमा की शिक्षा दी। देखो चैतन्य महाप्रभु कितने विनम्र हैं, ओहो विनम्रता की मतलब कोई वही नहीं, अपने भक्तों को बोल रहे हैं कि मैंने अब आपसे नाम की महिमा सुनी और रस तत्व की महिमा मैंने राय रामानंद से सुनी, अब कृपा करके मुझे सेवा अपराधों के विषय में कुछ शिक्षा दे दो, ताकि मेरे से सेवा अपराध भी ना हो। 10 प्रकार के नाम अपराध थे, तब सेवा अपराध कितने होते हैं, मैं पहले बोल चुका हूं लेकिन अगेन एक दफे रिपीट कर देंगे, क्योंकि ये ग्रंथ तभी समापन होता है आगे को। तो सेवा अपराध क्या है, तब 64 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं, कितने प्रकार के, 64 प्रकार के। तो सेवा अपराध का मतलब होता है, तो 10 नाम में अपराध थे, लेकिन अगर सेवा जो हम सेवा करते हैं मंदिर के अंदर बाहर वैष्णव के संग सब डील जो चलती है, तो वो जो सेवा अपराध होते हैं उससे भी हमको क्या हो जाता है, मन खराब हो जाता है, और मन खराब होगा तो जब ठीक होगा बताइए, नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास इतना स्टैंडर्ड कहाँ है अभी कि हमको सारी दुनिया कुछ भी बके और फिर भी हम अपनी स्थिति में है, ये तो आत्माराम स्थिति है, शरीर से देह से ऊपर उठ जाना। तो श्री हरिदास ठाकुर बोले, महाप्रभु आप एक ऐसे विषय पर मुझसे जिज्ञासा कर रहे हैं जिसे केवल सेवक लोग ही जानते हैं। मैं तो नाम के आश्रय में रहता हूं, मैं सेवा तो मैंने कोई करी नहीं। मेरे लिए नाम ही जप, नाम ही चिंत, नाम ही सार, नाम ही सेवा, नाम ही पूजा, नाम ही प्रणाम, सब मेरे लिए ही था। क्यों? क्योंकि मुझे 3 लाख जप पूरा करना होता था प्रतिदिन। सुन रहे हैं? ऐसा भक्त देखिए जिसे केवल सेवक लोग ही जानते हैं, मैं तो केवल नाम के आश्रय में रहता हूं, इसलिए इस विषय के बारे में मैं क्या बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा, परंतु फिर भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसका मतलब थोड़ी कि भक्त को पता नहीं, साक्षात भगवान अपने भक्त से बुलवा रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान और गुरु खुश हो, बोलो सारे अनपढ़ व्यक्ति भी भागवत का प्रकांड पंडित बन जाएगा। ध्रुव महाराज जी को शंख छुआया भगवान ने, ध्रुव महाराज गुणगान करने लग गए भगवान का वैदिक स्त्रोत्रों के द्वारा। इतना बालक देखो, 5 साल का बालक, कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, तो साक्षात भगवान सामने है तो क्यों नहीं बोलेंगे। ये मत सोचना कि नाम का आश्रय लिया तो उनको और चीज पता ही नहीं है, सब पता है। तो इसीलिए आप मुझसे जो बुलवाएंगे मैं उसी को विस्तार से बोलूंगा। ये है भक्तों का भाव। देखिए यही हमने भी सच में हम अपनी विद्वता छोड़ दी। वास्तव में जो कृष्ण बुलवा रहे हैं, समझे ना, वही मैं बोल पा रहा हूं। ये है भक्त की स्थिति। लेकिन साधारण दृष्टि से इसको मायावाद बोलते हैं इस बात को। जैसे अगर अभी हम लोग कहें जो कृष्ण, वो किसी को गाली दे रहे हैं तो जो कृष्ण कह रहे हैं वो मैं बोल रहा हूं, ठीक है कि नहीं, तो ये मायावाद हो जाएगा। लेकिन उस स्थिति में ये बात बिल्कुल ठीक है। सच में जब व्यक्ति टोटली भगवान को सरेंडर होता है, हे कृष्ण आप जो बुलवा रहे हो मैं बोल पा रहा हूं, बस। क्योंकि वो सच में वो अपने आप को लायक ही नहीं मानता है, प्रभु मैं तो गूंगा हूं, क्या बोलूंगा मैं आपके बारे में, वैष्णव के बारे में जब बोलना होता मैं क्या बोल, मेरे को पता ही क्या है, मैं तो अनभिज्ञ इंसान हूं, है नहीं। तो बोलते हैं आप मुझसे जो बुलवाएंगे वही मैं विस्तार से बोलूंगा, समझे। सेवा अपराधों की संख्या शास्त्र के अनुसार सेवा अपराध अनंत प्रकार के होते हैं, यहां अनंत भी लिख रखा है, और यह सभी श्री विग्रह से ही संबंधित होते हैं। श्री विग्रह मतलब ठाकुर जी के विग्रह से। किसी किसी शास्त्र में 32 प्रकार के और किसी किसी शास्त्र में 50 प्रकार के सेवा अपराधों का वर्णन मिलता है। तो श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु में 64 प्रकार के सेवा अपराधों का वर्णन है। तो सेवा अपराधों के विभाग, अब उसको कितने उसके विभाग हैं वो बता रखे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्रों की सहायता द्वारा इन सभी सेवा अपराधों को 4 भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। पहला है श्री मूर्ति सेवक निष्ठ, ध्यान से सुनिएगा, अर्थात जो मूर्ति की सेवा करते हैं उनके संबंध में अपराध। लोग मूर्ति की सेवा करते हैं, घर में हो, मंदिर में हो, कहीं पर भी हो, शालिग्राम हो, लक्ष्मी नारायण हो, गौर निताई हो, राधा कृष्ण हो, गिरिराज जी हो, ठीक है कि नहीं। तो जो भी सेवा कर रहे हैं, चाहे फोटो में भी सेवा कर रहे हैं, तो वास्तव में मूर्ति सेवा में जो कर रहे हैं उनके संबंध में अपराध। ये पहला प्रकार है, एक प्रकार का। दूसरा प्रकार का अपराध श्री मूर्ति स्थापक निष्ठ, अर्थात जो मूर्ति की स्थापना करते हैं उनके संबंध में कुछ अपराध, जो स्थापना कर रहे हैं। तीसरा श्री मूर्ति दर्शक निष्ठ, अर्थात जो मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं उनके प्रति अपराध, जो भगवान की मूर्ति दर्शन करने जाते हैं वो भी अपराध करते हैं कभी कभी, ठीक है कि नहीं। पता चला हाथ धोया ही नहीं, ऐसे ही जा रहे, चमड़ा पहन के, बहुत सारी चीजें हैं वो आगे सुनेंगे। आगे है चौथा सर्वनिष्ठ अपराध, अर्थात इन सबके लिए कोई अपराध, इन सबके लिए भी कोई अपराध। तो 32 प्रकार के सेवा अपराधों का पहले वर्णन किया है, आगे फिर और करेंगे। पहला है पादुका पहन के मंदिर में प्रवेश करना, पादुका मतलब चप्पल पहन करके, या जैसे घर में हम लोग चप्पल पहन कर रहे हो, थोड़ा गुदगुदेदार हो, कभी कभी लोग घर में पहन लेते पूरे चप्पल, घर वाले चप्पल, वो भी नहीं पहनने मंदिर में। इसलिए मंदिर की ऐसी व्यवस्था, वहां दरिया हो और आप सॉक्स पहन के जाए, लेकिन साफ सॉक्स, आज जो सॉक्स पहना वो कल ना पहन के आए, धोने की चिंता नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। बड़ी ठंड पड़ रही, कैसे सूखेंगे, तो रख लीजिए 6-7 जोड़े। अगले दिन जब मंदिर आए तो साफ सुथरे, ये नहीं कि पता चला उसमें ऐसी बदबू आ रही है बिल्कुल, है नहीं, और नीचे हुए नीचे सही में ऐसा मतलब प्रणाम करते तो बड़ी बदबू आती है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनका बिल्कुल जूता पहन के पसीना निकल करके और तीन तीन दिन का शौक सड़ा हुआ है, सही में तो बेहोश हो जाता है प्रणाम कर ऐसा नहीं, ये अपराध है। साफ स्वच्छ कपड़े, आज जो कपड़े पहने कल बदल देने चाहिए, नहीं तो स्वच्छ हो तो अलग बात है, नहीं तो स्वच्छ कपड़े पहनना, भले ही वो क्या बोलते, जैसे आप कपड़े अगर आप प्रेस नहीं करते हैं, कभी कभी कुछ भक्त प्रेस नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उस कपड़े को आप धो करके अपने तकिया के नीचे तो रख लें, नहीं तो पता चला इतने मुड़े हुए हैं चारों तरफ से बिल्कुल, ऐसे भी नहीं, इतने बड़े स्वामी के भक्त हो भगवान को भी बड़ा बुरा लगता है क्या है, नहीं तो ठीक से पहनना चाहिए, साफ सुथरे पहनने चाहिए और बढ़िया से पहनना चाहिए, क्या हर्ज है, ठाकुर के सेवक हो भाई आप। किसी ने पूछा स्वामी जी प्रभुपाद जी ने पता सिल्की कपड़े भी पहने, क्योंकि भक्ति सिद्धार्थ महाराज जी ने ओवरकोट तक पहना था, क्योंकि कलयुग धीरे धीरे ऐसा आ रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि लोग जो है संसारिक कपड़ों में ही मशगूल है, तो उनको ये सिखाने के लिए धीरे धीरे, इसका मतलब कि ओवरकोट ही पहने रहते थे लोग प्रचार के समय में, उनको कोई शौक नहीं था ओवरकोट पहनने का, अब इसका इसका हम उल्टा फायदा उठाए, अच्छा कल से भी ओवरकोट लेता हूं, क्योंकि भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते थे करते थे और हम ओवरकोट पहन के मंदिर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से ये अपराध है। दूसरा है उल्लंघन रूप में, उल्लंघन रूप में प्रभु के समीप जाना, उल्लंघन मतलब एकदम भगवान सामने खड़े हैं उसका कोई वही नहीं, मतलब ऐसे ही अपनी मस्ती में यार कुछ लोग डिंग डोंग होते हैं पिंग पोंग से निकलते हैं, उनको यही है कि मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं तो भाई ठाकुर जी मेरे सामने, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति जैसे गुरु महाराज जी सामने आ जाते हैं, आप वहां पर टिंग टोंग पिंग पोंग करते हो क्या, जो असभ्य भी हो भी सभ्य बन जाता है उस वक्त, तो सारे गुरुओं के परम गुरु हमारे क्या बोलते हैं ईश्वर परमेश्वर वो सामने खड़े हैं और हमें आभासी नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे डिंग डांग पीछे एकदम बिल्कुल पीछा पीछे का हिस्सा पीछे को कर रखा है भगवान की ओर, भगवान का दर्शन खुला हुआ है कोई मतलब नहीं, गलत बात है, इसका मतलब आपको भगवान का आभास नहीं है। प्रभु जी ऊपर बैठ जाइए, आप थके होंगे कल रात लेट सोए होंगे ना, हंसवान प्रभु बैठ जाइए ऊपर थोड़ी देर, कोई बात नहीं प्रभु ऊपर बैठिए बैठिए और बैठिए बैठिए कोई बात नहीं ठीक है बैठ जाइए प्रभु जी, हंसवान प्रभु बैठिए ऊपर बैठिए, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा को नहीं मानेंगे आप फिर आज मान लीजिए। तो श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा करना, श्री कृष्ण के आगे, ये जो लोग कभी कभी क्या होता है ये एक ट्रेडिशन हमने बना दिया है, ट्रेडिशन मतलब फैशन बना दिया है भगवान के आगे गोल गोल घूमने का, पट खुला हुआ है हम गोल घूम रहे वहां पर, किसने कहा ये गोल घूमना भैया है, आप नाचने में अगर घूमरी लगा रहे हैं चलो तो कोई बात नहीं, वैसे तो वो भी मैंने स्टैंडर्ड नहीं बता रखा है, लेकिन चलो प्रेम में आप घूमरी लगा रहे हो कोई बात नहीं, दो लोग ऐसे घूमरी राधा कृष्ण भी लगाते हैं घूमरी, एक फोटो देखा मैं राधा कृष्ण का घूमते हुए दोनों ऐसे पकड़े हुए, ये अच्छा है, लेकिन राधा कृष्ण के आगे ही कुछ लोग घूमते रहते हैं ऐसे ही, वो गलत है, परिक्रमा लगानी तो पूरी परिक्रमा लगाओ ऐसे करके, और जिस वक्त भगवान को भोग लग रहा हो उस वक्त परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, वैसे तो ये अपराध भगवान माफ कर देते हैं क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं बाहर की, लेकिन भक्त क्योंकि अगर भगवान को भोग लगते वक्त आप प्रणाम करने लगे भगवान को उठना पड़ता है ना उनको, तो भाई उन्हें प्रणाम किया है मेरे को उस वक्त, तो ये सब विधियां हैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और भगवान का जहां पट खुले हैं तो वहां पर इवन गुरु को भी प्रणाम नहीं करते हैं, अगर कर दिया भगवान बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि गुरु को प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन गुरु नहीं चाहते इसलिए नियम में यह है कि गुरु को भी प्रणाम नहीं किया, औरों को तो छोड़ दो ठीक है, क्योंकि भगवान के पट खुले हैं वहां पर केवल भगवान, ये दर्शाने के लिए कि भगवान ही सबसे बड़े हैं, ये भाव रखने के लिए, ऐसे नहीं वहां पर और किसी को प्रणाम नहीं करना है, हाँ पट पट बंद है वैष्णव लोग मिलते हैं सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करो है नहीं, फिर उसके बाद वैष्णवों को प्रणाम कर सकते हो जरूर करिए, और हाँ बाहर मिलते हैं वैष्णव तो बाहर भी, वैष्णव लोग तो जहां पर मिलते हैं सबसे पहले वहीं पर क्या करते हैं प्रणाम करते हैं, शर्म नहीं आती, हमारा परंपरा है हम नीचे झुकें, झुकना सीखेंगे तो तभी तो झुकना आएगा ना, नहीं तो झुकेंगे नहीं फिर। क्या मतलब?
जैसे महाराज पहले अभी दर्शन खुले नहीं है, महाराज बाहर शंख खुलाने आते हैं तो महाराज को प्रणाम कर सकते
हैं। हाँ हाँ, उस वक्त तो प्रणाम कर सकते हैं, जब शंख बजाने आते हैं, पट बंद है तो गुरु महाराज बाहर आते हैं, कोई भी तो उस वक्त प्रणाम करिए। लेकिन पट खुले में, क्योंकि गुरु को, गुरु की तो प्रतिदिन वंदना होती है, पहले गुरु महाराज जी का प्रणाम होता है, तो गुरु को ये अपराध उतना ज्यादा जटिल नहीं बताया ना, क्योंकि गुरु के लिए जो गुरु को हम प्रणाम कर देते हैं मान लिया तो भगवान नहीं लेते हैं उसको। लेकिन गुरु चाहते हैं कि भगवान की महत्ता बनी रहे, ऐसे तो अनेक गुरु हैं और सबको प्रणाम ही करते रह जाएंगे भगवान के आगे, तो इस उद्देश्य से ये नियम है इसकोन में भी पूरा, इस भक्ति सर्व सिंधु का नियम है। रूप गोस्वामी पाद जी बोले नहीं करना है गुरु जी को भी, ये पट खुले हो तो। भैया प्रभुपाद परम आचार्य है, धाम के वो हैं, तो आचार्यों को प्रभुपाद जी के लिए मान्य है। यस, ठीक है कि नहीं? आरती के समय परिक्रमा वैसे नहीं लगाते हैं, क्योंकि उस आरती के समय आरती में खड़ा रहना चाहिए। हम इतनी जल्दीबाजी कहाँ मची हुई, यहाँ कभी जाना हो तो कोई बात नहीं, आप दर्शन करके चले जाइए, नो प्रॉब्लम, कोई इतना वो नहीं है, है नहीं उल्लंघन। वैसे आरती के समय परिक्रमा लगाते हैं तो इतना बड़ा अपराध नहीं माना जाता। जैसे आरती चल रही है, आपने आरती फिनिश करके फिर हरिनाम एक्सटेंड किया जा रहा है, गा रहे हैं, तो लगा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो पट खुले हैं और वो लगाना कोई वो हर्ज नहीं है, ये बात है। और लेकिन अगर जैसे मंगल आरती चल रही हो कि हम पीछे जप करें या उस वक्त गायत्री करें, अच्छा नहीं है वो, फिर गायत्री के लिए बाद में समय है, पूरी आरती कर लो। तुलसी महाराज जी की भी आरती पूरी भी नहीं हुई और पीछे उसको आसन लेके क्या बोलते जप करने के लिए चले जाएं, कमाल है भाई, इतने बड़े आदमी आ गए, तुम बताओ तुलसी जी की कृपा ही नहीं चाहिए आपको, सब जा रहे हैं, तो ये ऊपर की ऊपर भी बोलने की जरूरत है। ये क्लास केवल हमारे लिए नहीं, ये क्लास सबके लिए है, याद आए ना सबको उस वक्त। और भागवत क्लास चल रही तो लेडीज लोग बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए, सब मुंह में अलीगढ़ का ताला लगा देना चाहिए, बढ़िया सर। खुसुर पुसुर भी नहीं, बिल्कुल वो अपराध होता है। भागवत कथा मतलब भगवान की कथा चल रही है और हम बीच में अपनी बातें बतिया रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। तो श्री कृष्ण के आगे परिक्रमा करना, उनके आगे परिक्रमा से गोल घूमना, उनके आगे परिक्रमा नहीं की जाती है, वो लोग अक्सर ऐसा करते हैं ऐसे ऐसे। तो आगे दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश करना, जैसे नहाए ना हो, शमशान घाट से आए हों बिना नहाए अंदर जा रहे हैं, और जैसे क्या बोलते हैं स्त्रियों में भी मासिक वो होता है, तो बिना नहाए मतलब नहा लें, नहा करके गंगा जल छिड़क करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके फिर मंदिर में जाएं, और मंदिर में जाके क्या करें, किसी पुजारी को टच ना होए उसमें, ऐसी अवस्था में स्त्रियों के लिए उदाहरण, आरती ले सकते हैं लेकिन छुए नहीं किसी को, तो दर्शन करके बाहर आ जाएं बल्कि ज्यादा बेस्ट है ये है, क्योंकि जिन लोगों का देरी का नियम है उनके लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि वो भगवान के बिना नहीं रह सकते, ठीक है कि नहीं, ऐसा नियम है करें जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हरि भक्ति विलास का बात है। बाकी दिन का नियम नहीं तो भैया बाहर आकर के दर्शन कर, बाहर से दर्शन कर लो पूरा, प्रणाम मार के वहीं जप करो, फिर जप करना मना थोड़ी है नहीं, ऐसा कर सकते हैं। तो आगे भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश करना, भोजन के बाद। अब एक भक्त ने क्या नियम बता दिया पता है, बोले कि पानी पीने के बाद भी कुल्ला करना चाहिए। मैंने कहा वाह, पानी पीने के बाद मतलब, अब जब पानी पीते हो मान लिये तब भी कुल्ला करें, मैंने कहा अति नहीं हो गई है, अति नहीं हो गई है, नियमों की धज्जियां उड़ा दी पूरी, दूसरे नियम पालन नहीं हो रहे वहां, कितने नियम जो करने चाहिए और वह पानी पीने के बाद भी कुल्ला करना चाहिए। मैंने कहा यार ये बिल्कुल एकदम डिस्टर्बेंस हुआ है, भक्ति में उत्पात खड़ा करना हुआ है, सही में ऐसा भी वो आजकल चल रहा है प्रचार कुछ अच्छा नहीं है कि पानी पीने के बाद जो है क्या बोलते हैं कुल्ला करना चाहिए, तो ये इतना ही कर लो बहुत हो जाएगा। भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश करना, जबकि ठंडी में नियम टूटते रहता है, कौन हाथ पैर कहां धोते हैं, सबके शौक सड़े हुए हैं, ठीक है कि नहीं, सीधा अंदर बिल्कुल, तो कम से कम मुंह तो बढ़िया से कुल्ला कर लो, नहीं तो अपराध माना जाएगा भगवान के प्रति। तो सेवा अपराध तो जो है भगवान के नाम लेने से, बढ़िया से नाम जपोगे तो सेवा अपराध क्या हो जाते हैं, माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन वैष्णव अपराध माफ नहीं होते, वो अगली दफे बताएंगे। अभी सेवा अपराध पूरे कर दें। वैष्णव अपराध सबसे घातक जो है वैष्णव अपराध है, हरिनाम के प्रति अपराध से भी ज्यादा भयंकर, ज्यादा भयंकर, जिसके कारण हमको कृष्ण मिलके भी हम कृष्ण से दूर हो जाते। एक ही कारण है बस, नहीं तो कृष्ण कभी दूर नहीं करते हैं, नाना अपराधियों को माफ कर देते हैं। इसी कारण से जब हम वैष्णव के द्वेषी बन जाते हैं तो कृष्ण हमको किक मार देते हैं, फिर बोलते हैं जाओ माया में, माया झपटिया धरती बढ़िया से कहीं वॉचमैन बना हुआ है, भक्तों की सेवा वहां था, वहां थाली कैसे उठा सकता हूं मैं, इतने बड़े घर का बेटा हूं। आज एक आया प्रभुपाद जी की शरण में, बहुत अमीर व्यक्ति था, बोले प्रभुपाद मैं फुल टाइम बनना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं ठीक है, जो बर्तन दिख रहे हैं ना इनको साफ करना पड़ेगा, इस सेवा है तुम्हारी, ठीक है कि नहीं। तो एक दिन बर्तन साफ किए और उसके बाद नजर ही नहीं आया वो समझ रहे नहीं। तो ये टेस्ट है ना व्यक्ति का, कि वास्तव फुल टाइम बनने के लिए आए। कोई भी सेवा दे दो आपको, टॉयलेट साफ करने की सेवा दे दी जाए, हम तैयार हैं, तब आप भक्ति कर सकते हो। ऐसा नहीं कि प्रचारक तो बनोगे, लेकिन पहले ये भी जो बता रखा है, जैसे मंदिर सफाई, हम लोग पहले मंदिर खुद साफ करते थे, वॉचमैन लोग नहीं करते थे। आज तो करताल भी वॉचमैन लोग पकड़ा रहे हैं, ये शर्मी की बात है। इतने भक्त क्या करेंगे बताओ, सब भक्तों की ड्यूटी होनी चाहिए सेवा, कि करताल मर्दन अंदर रखने हैं, मर्दन जब बाहर रखे तो उसके नीचे क्या होना चाहिए, कुछ आसन होना चाहिए। मर्दन बलराम जी हैं, तो ये सब अपराध है। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो क्या है, ये हमारे उनके प्रति श्रद्धा नहीं हमारी, और जब श्रद्धा नहीं है तो भक्ति हमारी स्ट्रेगनेट हो जाती, मतलब रुक जाती है। हम जानते हैं कृष्ण को, हम मानते हैं कृष्ण को, ठीक है कृष्ण के भक्त भी हैं, फूले हुए भक्त हो फूले हुए हैं। तो जो ये छोटी छोटी चीजों को गंभीरता से लेता है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ता है, और जो केयरलेस हो जाता है वो फिर उसको 10-12 जन्म और लग जाते हैं जाने में, धाम जाने में, समझ रहे नहीं। तो जाओगे धाम, लेकिन भैया जब तक सीरियस नहीं होगे तब तक कृष्ण नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहां पर फिर मृदंग को ऐसे ही फेंक दोगे, वहां पर भी ऐसे ही फेंकेंगे तो कृष्ण बोलेंगे केयरलेस आदमी अभी नहीं आना है, इसको थोड़ा और रुको नीचे। तो आगे भोजन के बाद हाथ पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश करना, तो हाथ पैर धोना जो कुल्ला, मैं देखता हूं कितने लोग कुल्ला करते ही नहीं है सही में। तो वहां से क्या बोलते हैं, प्रसाद भोजन ग्रहण किया, कुल्ला किया ही नहीं होता, बस ऐसे पानी ही, खाली पानी ऐसे लगाते हैं, बस हो गया। फिर 3-4 दिन कुल्ला करो बढ़िया से, पूरा अंदर जो फंसे हुए हैं, नहीं तो वही चीज जब ज्यादा देर तक सड़ते रहता है तो कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, फिर फिलिंग करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, है नहीं। तो इसलिए कुल्ला करना चाहिए, हाथ बढ़िया से धोना चाहिए, और जब हम टॉयलेट जाते हैं उसके बाद भी हाथ कम से कम 3-4 दफे धोना चाहिए। इसलिए टॉयलेट उसका साबुन अलग होना चाहिए, वो हमारा साबुन वहीं पर रहे आपके घर में सबकी, और नहाने वाला अलग होना चाहिए। लोग ऐसा नहीं करते हैं, वही साबुन यूज करना है, करते हैं तो भैया हमारे तो गायत्री लगी होती है, हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इस सब सारे साधन। तो वो हाथ कैसे धोना है, बाएं वाला साबुन में ऐसे लगाना है हाथ को और धोना है, फिर दोबारा साबुन को धो करके ऐसा, फिर इससे करके ऐसे, फिर तिबारा करके फिर दोनों हाथ से लगाओ, पहली दफे नहीं इस हाथ में नहीं लगाना है वो, ठीक है ना। इस हाथ से साबुन तो रखना, ऐसे करके पहले उसको ऐसे करके धो लो 2-3 दफे, फिर 4थी दफे बढ़िया से करके साफ करके, और जब करते वक्त नाक के अंदर ऐसे डाल दें, फिर वैसे फिर उसी में मालूम है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। ये मतलब सीरियस जप नहीं है, इसका मतलब हमको तुलसी माला में नाक का लगाना है। मैं बताऊ तुलसी इतनी शुद्ध है, और नाक का लगाया हुआ, यहाँ यहाँ खुरो चाहे वहां खुरे चाहे, ठीक है कि नहीं। पैर में हाथ लगाया और सीधे फिर माला में हाथ लग रहा है, हाथ धोना है, पैर में हाथ लगाते फिर क्या करना है, हाथ धोना है, उठना है, कोई बात नहीं आलस खत्म करो, उठो और हाथ धो के आओ तुलसी के उधर से बहुत। और नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, नाखून बड़े मतलब भूत और भूतनी, भूतों का होता है घर, नाखून में ज्यादा लंबे बाल, ज्यादा लंबे केस भी, ठीक है कि नहीं, वो जो है भूतों का होता है। इसके नाखून के अंदर जो है गंदगी चली जाती है, और वो गंदगी जो है भगवान की सेवा में डिस्टर्ब करती है। और अच्छा जिसके लंबे नाखून होते हैं ना तो रात को फिर भूत भी आता है, फिर बोलता है मेरा दोस्त है, सही नहीं बोलता क्योंकि उनके लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे बाल ठीक से समाजना नहीं उनको सच में, फिर भूत जो है उसके दोस्त बनते हैं। सच में भूत होते हैं, ऐसा नहीं कि भूत नहीं है। भूत पिचास क्यों लिख दिया, भूत पिचास जो है शिवजी के गण हैं सब। शिवजी जब शिवजी ने भूत भूत पिचासों प्रेतों की सृष्टि करी उन्होंने, ब्रह्मा जी ने रोक लगा दी, बोले भैया सारे भूत पिचासी हो जाएंगे, बहुत तुमने सृष्टि कर दी, रोक लो। भागवत की बात है, ब्रह्मा जी ने रोक लगा दी, बोले बहुत हो गया, मनुष्य भी पैदा करने हैं कुछ तो भूत पिचास हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो एक हाथ से दंडवत करना अक्सर करते हैं हम लोग, अष्टांग प्रणाम में दो पैर दो घुटने दो हाथ कितने हुए छह, एक छाती और एक मस्तक आठ हुए, अष्टांग प्रणाम बोलते हैं इसको, पूरा ये प्रणाम ऐसे होना चाहिए ऐसे। तो माला कहाँ रखें, ऐसे रख लो, नहीं तो उठा करके कहीं पर रखो, और अगर डर लगता है कोई उठा ले जाएगा भैया उसमें, आजकल तो माला में ही बिल्ड क्या बोलते हैं नाना चीजें हम लोग रखे हुए, पैसे भी सब चांदिया से लेके सारा कुछ माला ठीक है कि नहीं भाई। तो फिर उसको ऐसे रख करके, यहाँ पर रख के गिरता नहीं है, पूरा प्रणाम कीजिए ऐसे करके, या फिर कभी कभी कुछ लोग ऐसे हाथ रखते हैं और प्रणाम करें, ये भी गलत प्रणाम विधि है, ये अपराध हो जाएगा पूरा हाथ से। और स्त्रियां लोग पंचांग प्रणाम, दो घुटने और दो हाथ और एक मस्तक, बस ये स्त्रियों का प्रणाम है। तो एक हाथ से दंडवत प्रणाम करना ये भी है। श्री मूर्ति के आगे रुदन अथवा चित्कार करना बड़ी तेजी से, हाय मैं मर गई ऐसे कभी ऐसे लोग कितने मतलब बाहर संसार में दुखी होके आते हैं, मैं मार रहे हैं उनको छाती पर कभी, वैसे भी रुदन करना है तो भगवान के लिए रोइए, लेकिन संसारिक व्यक्ति के लिए मेरा प्रेमी खो गया इसलिए रो रहे हैं आप तड़ तड़ के, भगवान को बड़ा दुख लगता है, असली प्रेमी मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक बदमाश जो है जिसने धोखा दिया उसके लिए रो रहा है, बेशर्मी की हद हो गई, जिसने चीट किया उसके लिए रो रहे हैं हम, समझ रहे हैं, और सारे लोग उसी के लिए रोते हैं क्योंकि किसी ने किसी ने धोखा दिया है, अच्छा हुआ तभी तो पहुंचे ठीक शरण में, तो उनके लिए हम रो रहे हैं, उनके लिए तड़ 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 आंसू बह रहे हैं, भगवान को बहुत दुख लगता है, इतना बड़ा प्रेमी साक्षात खड़ा है और रो किसी और के लिए रहे, समझ रहे हैं, तो उसी के पास जाओ ना, काम बना दो मेरा, वाह फिर भी उसको छोड़ेंगे नहीं तो दुख दुख लगेगा कि लगेगा बताइए, आपके पास कोई आए वो आपकी बात तो कुछ कर ही नहीं रहा, आपने क्या क्या कह रहे, वो केवल दूसरे का ही वो कर रहा है भैया, तो उसी के पास जाओ फिर भाई। तो मूर्ति के चित्कार भी नहीं कर, जोर जोर से ऊंची आवाज में किसी को डांटना भी नहीं वहां पर, क्योंकि इसका मतलब आप अपने आप को कंट्रोलर मान रहे हो ज्यादा, वहां इतना ही बस जितना लिमिटेड है बस, लोगों को बोल करके आगे भगवान की कथा और कीर्तन होना चाहिए बस। श्री मूर्ति के आगे प्रसाद खाना, भगवान के आगे ही प्रसाद भी मिल रहा है तो उनके आगे ही चबर चबर, जब गुरुदेव जी प्रसाद देते हैं तो उनके आगे हम लोगों को खाने का दिल नहीं करता है, करता है हम लोग रख लेते हैं, बोल जब बोलते हैं नहीं पालो फिर भी हम लोग थोड़ा पा करके उधर को ऐसा कर लेते हैं, तो भगवान के आगे हम लोग बोले नहीं कोई बात नहीं प्रसाद है कोई बात नहीं बस शुरू कर दिए, ये अपराध है। तो नवा है श्री मूर्ति के आगे पैर फैलाना, अब पैर में दर्द हो गया तो खड़े हो जाओ भैया, खड़े हो जाना क्या है ये नियम है, ये प्रभुपाद जी ने स्टैंड अप प्रभुपाद जी खड़ा करा देते थे, माला में नींद आ रही है बोले खड़े हो जाओ, बोले का क्लास में नींद आ रही है बोले खड़े हो जाओ, और जपा में नींद आ रही है तो आप ऐसे खड़े होकर जप करो, लेकिन पैर फैला करके ऐसे, मंदिर का विधि नहीं है वो, या मंदिर के बीचों बीच में कुर्सी लेके बैठ जाना नहीं जी, किनारों में रख दो कुर्सी एक साइड में, वो भी आगे आगे नहीं, भगवान का पट खुले पीछे साइड एकदम उस साइड, जिन लोगों को तकलीफ है वास्तव में कुर्सी में बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां का स्टैंडर्ड वहां पालती मार के बैठना चाहिए बढ़िया से, या नहीं तो पैर को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर लो तब भी, लेकिन पैर ढक लेना है, पैर खुले नहीं रहने चाहिए, ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो श्री मूर्ति के आगे चर्म धारण करना, चर्म मतलब चमड़ा, चमड़ा धारण नहीं करना चाहिए, चमड़े की बेल्ट चमड़े की चीजें, इसलिए हम लोगों को चमड़ा वाली चीज, आपको पता चमड़ा कैसे बनता है, गाय को खोलते पानी में डाल दिया जाता है, खोलते जिस जिसका भैंस को भी, और फिर उसका चमड़ा उतारा, और उसका चमड़ा उतर करके हम अपने शरीर को सजाएं। जितनी चमड़े की चीजें हैं उनको फेंक दो, सबको, किसी को दो भी नहीं, फेंक दो सीधा। तो दूसरी कितनी रैक्सीन की चीजें आ रही हैं, दूसरी चीजें आ रही हैं, सभ्य वाली चीजें हैं ना, भक्त लोग पहनते भी भद्र वाली चीजें हैं, फोकट की चीजें नहीं है। हम दूसरे को दुख दे करके उसके चमड़े को अपने शरीर का श्रृंगार क्यों बनाए? बड़ा बुरा लगता है नहीं? और हाँ, जो ढोल है जैसे शंख है, ये शुद्ध चीजें हैं, ये भगवान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये चमड़ा शुद्ध माना जाता है। देखिए, जबकि मंदिर के अंदर रहता है वो, लेकिन इसमें अपराध नहीं है, वो कृष्ण की सेवा में लग रहा है। तो श्री मूर्ति के आगे भिक्षु को दान देना, भिखारी को, उनके आगे जो भाव बहुत बड़ा दानी आ गया, हमें माला दान दे सकते हो, लेकिन आप ऐसे धन दान में देना, मैं दे रहा हूं, वो अच्छा नहीं है। श्री मूर्ति के आगे किसी से कठोर वचन कहना, डांटना, कठोर वचन कहना नहीं चाहिए। श्री मूर्ति के आगे किसी को डांटना, श्री मूर्ति के आगे बातें करना, ये बातें करना भी अपराध है। श्री मूर्ति के आगे झूठ बोलना, और श्री कृष्ण मूर्ति के आगे लेटना है। तो बोलते हैं बहुत थक गया मैं, थोड़ा लेट जाता हूं, ठीक है कि नहीं? ये अच्छा नहीं है, ठीक है। ये 16 तक हो गए हैं, अभी मैं यहीं पर विराम देता हूं, और सब अगली दफे करेंगे। तो आप लोगों ने माध्वाचार्य जी के बारे में तो ऊपर सुन ही लिया होगा। अभी 28 तारीख को नित्यानंद प्रभु जी का क्या हो रहा है?
आविर्भाव दिवस।
तो हम सब लोग नित्यानंद प्रभु जी से भी कृपा मांगेंगे, और सदा कृपा के आकांक्षी, आज ही नहीं हमेशा के लिए। और क्या क्या त्योहार हैं? अद्वैताचार्य जी का हो गया, और भीष्माष्टमी 23 को कल थी, आज श्रीपाद माध्वाचार्य जी का तिरुभाव दिवस, 25 तारीख को श्रीपाद रामानुजाचार्य जी का, और 26 तारीख को यहाँ से बसें जाएंगी, अलग अलग जगह बसें भी दे रखी हैं, वो है वेद व्यासी के फार्म हाउस में, हम लोग जो गैदर होते हैं सब लोग एकत्रित होते हैं, तो बहुत सुंदर क्या बोलते हैं इसमें भजन कीर्तन महाराज जी के द्वारा प्रवचन, और बहुत ड्रामा, और वृंदावन के गुरुकुल के बच्चे भी आ रहे हैं, और फिर शाम को मटकी फोड़ वाला कार्यक्रम होते हुए वापसी। तो सवेरे सवेरे वहां पर नाश्ता प्रसादम रहेगा एकादशी का, जिसमें पनीर पकौड़े प्रसादम भी रहेगा, ठीक है कि नहीं? ये प्रसादम भी है, सूप प्रसादम भी है, ठीक है, सारे बैंगल, और क्या बोलते हैं आलू का जो है फिंगर चिप्स प्रसादम, इस टाइप के मतलब रख रखे हैं सवेरे नाश्ता में, ठीक है, नाना प्रकार के पकौड़े प्रसादम रखे हैं। और दोपहर में तो फुल होगा ही, जैसा एकादशी का होता है, साबुदाने बहुत अच्छा बनाते हैं उन्होंने, बहुत सुंदर। तो सारा आपको लगेगा ही नहीं कि एकादशी है, ऐसा महाप्रसाद होता है, 20,000 के लिए बना रहे हैं हम लोग। तो फास्टिंग टिल नून फॉर रीजन सी नेक्स्ट डे, भैमी एकादशी, उस दिन भी 11-12 बजे तक लिख रखा है, लेकिन चलो। ब्रेकफास्ट टाइम 7:11, 10:46, 27 तारीख को। श्री बराहदेव अपीयरेंस डे, फास्टिंग इज डन यस्टरडे, फीस्टिंग टुडे। अब देखिए, तो फिर उनने नाश्ता रखा है, उनने ध्यान से देखा नहीं, एकादशी का प्रसाद भी हम लोग 12 बजे बाद ही पाएंगे। क्यों क्यों ऐसा रखा है? क्योंकि बराहदेव जी का अगले दिन आविर्भाव दिवस है, जन्मदिन है, तो क्योंकि उस दिन 12 बजे तक रखेंगे तो हम व्रत नहीं टूट पाएगा हमारा, अन्न नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो व्रत भी एकादशी के दिन ही, एकादशी का प्रसाद भी 12 बजे तक नहीं खाएंगे, इसलिए वो व्रत भी हो गया, इसलिए ये है मतलब भक्तों के लिए, ठीक है। तो अच्छा, 27 को फ्लावर, 27 28 अच्छा 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 मतलब ड्रेस बनाने के लिए, बनाने के लिए, हाँ ठीक ठीक। 28 तारीख को फूलों की डेकोरेशन होनी है, सुन लीजिए पहले, मैं समझ गया। तो 27 तारीख से सेवा शुरू हो जाएगी, क्योंकि फूल बनाने में बहुत समय लगेगा, तो 27 दोपहर से ही ना, सवेरे से ही समझ लो, सवेरे 10 बजे से इस सेमिनार हॉल पर जहाँ यूथ का कार्यक्रम होता है, सवेरे 10 बजे से शुरू हो जाएगा। तो आप लोग सेवा में आ सकते हो, साफ कपड़े, स्त्रियां साड़ी और तिलक में आए, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है, दीक्षित नहीं हो चिंता नहीं है, लेकिन साफ सुथरा कपड़ा पहन के एकदम नहा धो के बढ़िया से, ठीक है, बाल भी धोले उस दिन पूरा साफ करके तब भगवान की सेवा करनी चाहिए अगले दिन वो। और जो फूल रखेंगे ना उनको बोला पूछी नीचे साफ चटाई होनी चाहिए, साफ चादर जिसको किसने यूज नहीं किया, या ऐसे ही डाल देते हैं गलत बात है, फिर उतने फूल को धोते थोड़ी हम खाली, और पुष्पे पुष्पे महापुष्पे फट स्वाहा वाला मंत्र नहीं चलेगा वहां पर, ये पुष्प शुद्धि मंत्र है ये, तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि आप जमीन में क्यों डाले, पहले से होश नहीं था, साफ चादर है लो भगवान के लिए, 10 चादर है लो, डोनेशन किस लिए आ रही है, तो साफ चादर लेके उसमें फूल डाल करके बढ़िया से, जो फूल भी लाए उनको बोला छांट के लाना जरा साफ साफ पुराने नहीं, तो फिर बढ़िया से आप लोग और पुरुष लोग आए धोती कुर्ता में आए, सब लोग आ सकते हैं सेमिनार हॉल पे 27 तारीख को सवेरे 10 बजे, ठीक है। उसके बाद सेवा सब पूरे शाम तक बना देंगे, तब वही ड्रेस पहना देंगे, सवेरे सवेरे दिखेगा वो मंगल आरती में, गुड दर्शन आरती। और फिर उसके बाद 3-4 बजे ड्राई फ्रूट का भी है, तो जो लोग ड्राई फ्रूट देना चाहते हैं, किशमिश देना चाहते हैं, काजू देना चाहते हैं, बादाम अपनी तरफ से, वो भी दे सकते हैं, क्योंकि उससे ड्रेस बनेगा फिर। जी जी जी, तो शुरू भी हो गया तो हमको दे दें, आप लक्ष्मी भी दे सकते हैं, आपको दान क्या बोलते हैं रसीद काट के दे देंगे, ठीक है कि नहीं, कि आपकी तरफ से भाई भगवान की सेवा गई। यहाँ तो हर चीज सेवा में ही लग रहा है, ठीक है। 27 को तो 28 को नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस, फास्टिंग टिल नून, और एकादशी प्रसादम टेकन, उस वक्त एकादशी प्रसाद ले लेते हैं। तो लोगों का प्रश्न रहता है शाम को क्या ले, फिर मान लिया 12 बजे ले लिया 1 बजे, तो शाम को भी भक्त लोग क्या करते हैं, जो रह सकते हैं वो लोग एकादशी का ले लेते हैं, नहीं तो अगर कोई अन्न लेता है तो कोई पाप नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ऐसे फंक्शनों में, यहां तक कि रामनवमी में भी प्रभुपाद जी ने अन्न प्रसाद रखा था वृंदावन में भी, तो कोई प्रभु भगवान को क्या है ना, भगवान को थोड़ी एकादशी होती है उनकी, ठीक है। विष्णु तत्व की वजह से मतलब एकादशी प्रसाद शुद्ध होता है, बहुत ज्यादा एकादशी का जो प्रसाद है ना वो शुद्ध होता है, इसलिए वो भगवान के लिए वो किया जाता है, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं ले सकते, ठीक है। तो आगे जो है बस कृष्ण मधुर उत्सव 30 तारीख को, जय हो। और उसके बाद तो फिर ये आपका 31 के बाद फरवरी में कब से जा रहे हैं भक्त लोग मायापुर को, 6 तारीख से फरवरी 13 को, 13 से मतलब 10 से शुरू हो जाएगा फरवरी, फरवरी 10 से सब मायापुर की ओर जाना शुरू हो जाएंगे परिक्रमा के लिए, इसके लिए इसके लिए सब आनंद से, ठीक है। और ये महीना लाइफ मेंबरशिप मैराथन चल रहा है, आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारी सेवाएं प्रभुपाद जी, एक भी व्यक्ति को जोड़ा आपने जैसे तैसे, ये नहीं सोचना चाहिए मेंबर को गेस्ट हाउस ना मिले, गेस्ट हाउस की बात मत करो, लेकिन मेंबर बने हो, क्लबों का मेंबर बन रहा क्या है, उसको बोलो आप, आपको किताबें मिलती हैं, आपको SMS आते हैं जन्मदिन पर, और राधा कृष्ण फोटो मिलता है, आपका धन जो है सेवा में लगता है, संडे को कूपन्स मिलते हैं आपको प्रसादन के, है नहीं, लाभ ही लाभ तो है, तुम्हारा पूरा परिवार जो है कौन से जुड़ता है, आप लोगों को एक एक मेंबर और बनाना भी चाहिए वैसे, है प्रभु, खोजिए तो सही है, क्यों नहीं मिलेगा, आपके जो परिचित लोग हैं उनमें से पूछ लो किसी से, प्रभु जी आप मेंबर हो कि नहीं हो, पार्ट पेमेंट में भी बन सकते हैं 5-5 हजार करके, ऐसे 21,111 है, ठीक है, अभी समझ रहे ना, तो इसको उल्टा नहीं सोचना है, पॉजिटिव माइंड में बात लेकर के एक एक को बनाओ, कोशिश करो, कोशिश करोगे तो क्यों नहीं बनेंगे, सोचेंगे ही नहीं तो क्या होगा। आप फॉर्म ले जा सकते हैं ऊपर, हमसे ले जा सकते हैं ऑफिस में से भी या वैसे भी, और नहीं तो फोन कर दीजिएगा हमको, ये व्यक्ति बनने वाला है, ठीक है ना, हम लोग आएंगे आपके सामने सामने प्रचार भी करेंगे, पूरा घर आनंदित होगा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिनाम चिंतामणि जी की, उपस्थित भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, श्री माधवाचार्य तिरुभाव दिवस महोत्सव की, युग धर्म हरिनाम की, उपस्थित भक्त वृंद की, गौर प्रभु की, आप सबकी, हरे कृष्ण।